लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेही आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्षों की स्थिति में हम ध्रुवीकरण और लोक लुभावनवाद के खिलाफ संवाद और मैत्री के साहसी निर्माता बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार 11 जुलाई को रोम के जेमेलिया अस्पताल के पोर्टिको से देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित करते हुए कहा,
करी फ्रतेली ए सोरेले, बोंजोर्नो।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
सोनो कॉन्टेंटो di poter mantenere l'appuntamento domenicale dall'Angelus anche qui dal Policlinico Gemelli.
मैं खुश हूँ कि रविवार के देवदूत प्रार्थना को यहाँ जेमेली अस्पताल से भी कर पा रहा हूँ। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैंने आप सभी के सामीप्य एवं प्रार्थना में सहयोग का एहसास किया है। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।
Grazie di cuore.
तबीयत ठीक नहीं होने के कारण संत पापा पिछले एक सप्ताह से जेमेली अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए कहा,
Il Vangelo che si legge oggi nella liturgia narra che i discepoli di Gesù inviati da lui ungevano con olio molti infermi.
आज का सुसमाचार पाठ बतलाता है कि यीशु के शिष्य उनके द्वारा भेजे जाकर बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। संत पापा ने कहा कि यह तेल रोगियों के संस्कार पर चिंतन करने हेतु प्रेरित करता है, जो आत्मा और शरीर दोनों को आराम प्रदान करता है, किंतु यह रोगियों की देखभाल करने वालों के लिए सुनने, सामीप्य, चिंता करने और कोमलता का भी तेल है। यह एक दुलार की तरह है जो बेहतर महसूस कराता, दर्द को शांत करता और राहत देता है। हम सभी को कभी न कभी सामीप्य एवं कोमलता के इस मलन की आवश्यकता जरूर होती है, जिसको हम एक मुलाकात, एक फोन और दूसरों की आवश्यकता में उनकी मदद द्वारा दूसरों को दे सकते हैं। हम याद रखें कि अंतिम निर्णय के दिन एक चीज जो हमसे पूछा जाएगा वह है बीमारों से निकटता। एक अच्छे अस्पताल की आवश्यकता एवं महत्व पर ध्यान देते हुए संत पापा ने कहा,
In questi giorni di ricovero in ospedale ho sperimentato ancora una volta quanto sia importante un buon servizio sanitario accessibile a tutti.
इन दिनों अस्पताल में भर्ती होकर मैंने फिर एक बार महसूस किया है कि सभी के लिए उपलब्ध एक अच्छा स्वास्थ्य सेवा कितना आवश्यक है, जैसा कि इटली एवं अन्य देशों में है, एक स्वास्थ्य सेवा जो सभी के लिए एक अच्छी सेवा देती है। उन्होंने कहा, इस कीमती संपत्ति को नहीं खोना चाहिए, इसे बनाए रखना चाहिए, इसके लिए सभी को प्रतिबद्ध होना है, क्योंकि यह सभी के लिए आवश्यक है और सभी से सहयोग की मांग करता है। कलीसिया में भी कभी कभी किसी स्वास्थ्य सेवा संस्थान में ऐसा होता है कि कुव्यवस्था के कारण आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चलती है, तो हमारे मन में भी पहला विचार आता है कि उसे बेच दिया जाए, किंतु संत पापा ने कहा कि आर्थिक दबावों के कारण आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की क्षमता से समझौता नहीं करना चाहिए। संत पापा ने अस्पतालों के सभी कर्मचारियों की सेवा के लिए उनकी सराहना करते और उन्हें प्रोत्साहन देते हुए कहा, मैं अस्पतालों के सभी डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के प्रति अपनी सराहना एवं प्रोत्साहन व्यक्त करता हूँ। हम सभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें। संत पापा के साथ कुछ बच्चे भी उपस्थित थे। उन्हें इंगित करते हुए संत पापा ने कहा,
यहाँ
कुछ बीमार बच्चे मित्र हैं। बच्चे क्यों दुख सहते हैं? बच्चे क्यों दुख सहते हैं यह एक सवाल है जो हृदय को छू लेता है। हम उनके लिए एवं सभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें, खासकर जिनकी स्थिति अत्यंत कठिन है। उन्होंने कहा, कोई भी अकेला ना छूटे, हर कोई सुनने सामीप्य एवं देखभाल का मलन प्राप्त करे। इसके लिए हम रोगियों के स्वास्थ्य हमारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini unciavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने हैती में हुई हत्या की याद करते हुए कहा,
Negli ultimi giorni la mia preghiera è stata spesso rivolta ad Haiti.
पिछले दिनों राष्ट्रपति की हत्या एवं उनकी पत्नी के घायल होने पर मेरी प्रार्थना अक्सर हैती के लिए रही है। उन्होंने हथियारों से अपील करते हुए कहा, मैं देश के धर्माध्यक्षों के साथ हार्दिक अपील करता हूं कि आप अपने हथियारों को छोड़ दें, जीवन का चुनाव करें और सभी के एवं हैती के हित में एक साथ भाईचारा से जिएं। मैं हैती के सभी लोगों के करीब हूं। मैं आशा करता हूं कि हिंसा का अंत होगा और राष्ट्र भावी शांति एवं सौहार्द की ओर पुनः यात्रा करेगा। इसके बाद संत पापा ने सागर के रविवार की याद की, जो नाविकों एवं समुद्र में काम करने वालों तथा समुद्र से रोजी रोटी कमाने वालों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं तथा सभी से अपील करता हूं कि महासागरों एवं सागरों की देखभाल करें, समुद्र के स्वास्थ्य की चिंता करें और प्लास्टिक ना फेंकें। तब संत पापा ने पोलैंड के चेस्तोकुआ तीर्थस्थल में तीर्थयात्रा करने वाले रेडियो मरिया परिवार की याद की। यूरोप के संरक्षक संत बेनेडिक्ट के पर्व की याद करते हुए संत पापा ने दुनिया भर के सभी बेनेडिक्टाइन ऑर्डर के समर्पित भाई बहनों को शुभकामनाएं अर्पित की और अंत में उन्होंने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Buon pranzo e arrivederci.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार 11 जुलाई को देवदूत प्रार्थना के बाद विश्वासियों को याद दिलाया और कहा, आज समुद्र रविवार है, उन सभी को एक विशेष तरीके से समर्पित जो अपने काम और आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर करते हैं। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला समुद्र रविवार लोगों का एक साथ आना और नाविकों एवं मछुआरों के लिए प्रार्थना करने का दिन है और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। जैसा कि संत पापा फ्रांसिस बताते हैं, यह एक ऐसा दिन भी है जिसमें समुद्र और उसकी पारिस्थितिकी तंत्र की देखभाल के महत्व को उजागर करना है। उन्होंने कहा, समुद्र के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, समुद्र में कोई प्लास्टिक न फेंकें। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि सालाना 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में प्रवेश करता है, जिससे समुद्री जीव इसे खाते हैं और कई मर जाते हैं और खाद्य श्रृंखला में मानव भोजन हो जाता है। संत पापा फ्रांसिस ने अपने विश्व पत्र लौदातो सी, हमारे आम घर की देखभाल में महासागरों और समुद्रों की देखभाल की आवश्यकता का उल्लेख किया। अनुच्छेद 40 और 41 में वे लिखते हैं, महासागरों में न केवल हमारे ग्रह की जल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा होता है बल्कि अधिकांश जीवों की विशाल विविधता भी होती है। उनमें से कई अभी भी हमारे लिए अज्ञात हैं और विभिन्न कारणों से खतरे में हैं। विशेष रूप से समुद्री जीव पर खतरा है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। वे समुद्री खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। सृष्टि की देखभाल हेतु प्रार्थना के चौथे विश्व दिवस 2018 को वाटिकन सम्मेलन में व्यापार जगत के नेताओं को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा, हम अपने समुद्रों और महासागरों को तैरते हुए प्लास्टिकों से गंदा करने की अनुमति नहीं दे सकते। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, जैसा कि सब कुछ ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है, और काम करने की जरूरत है, जैसा कि सब कुछ हम पर निर्भर करता है। और संत पापा फ्रांसिस 4 जुलाई से रोम के जमेली अस्पताल में हैं और ऑपरेशन के बाद स्वस्थ हो रहे हैं। इन दिनों संत पापा दूसरे धर्म गुरुओं, नेताओं और विश्वासियों के स्नेह और निकटता का अनुभव कर रहे हैं। संत पापा ने 2 ट्वीट कर अपने अनुभवों को साझा किया और बीमारों के लिए प्रार्थना करने हेतु प्रेरित किया। संत पापा ने पहले ट्वीट संदेश में लिखा, आइए हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें कि कोई अकेला न रहे, सभी को सुनने, निकटता और देखभाल का अभिषेक मिले। हम सब इसे बीमारों को देखने जाकर, फोन द्वारा और हाथ बढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। दूसरे ट्वीट में संत पापा ने अस्पताल में रहकर अपना अनुभव साझा करते हुए संदेश में लिखा, अस्पताल में भर्ती होने के इन दिनों मैंने अनुभव किया है कि सभी के लिए अच्छी स्वास्थ्य देखभाल कितना महत्वपूर्ण है। इस अनमोल लाभ को खोना नहीं चाहिए जिसमें सभी के योगदान की आवश्यकता है। उधर समुद्र रविवार के दिन अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टेला मारिस के निदेशक फादर ब्रूनो सिसेरी ने नाविकों द्वारा किए गए काम के लिए और एक वैश्विक महामारी के बीच हमारे जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए सामानों के परिवहन हेतु नाविकों की प्रशंसा की। वर्तमान में मर्चेंट जहाजों पर लगभग 2 मिलियन नाविक हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर भोजन और दवा तक सब कुछ एक देश से दूसरे देश तक ले जाते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि सितंबर 2020 में कोविड 19 महामारी के बीच चालक दल में बदलाव करने की कठिनाइयों के कारण 4 लाख नाविक अभी भी अपने जहाजों पर फंसे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के अनुसार अन्य 4 लाख नाविक घर पर फंसे हुए हैं। जहाजों में शामिल होने और अपने परिवारों के लिए आर्थिक समर्थन प्रदान करने में असमर्थ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों पर महामारी का गंभीर प्रभाव पड़ा है। फिर भी नाविकों की कड़ी मेहनत के माध्यम से प्रकोप के दौरान दुनिया भर में सुपरमार्केट की अलमारियों में सामानों का स्टॉक रखना जारी रखा गया है। स्टेला मारिस जैसे उदार संगठनों के लिए यह और भी अधिक जरूरी है कि नाविकों को प्रमुख कार्यकर्ताओं के रूप में पहचाना जाना चाहिए और टीकाकरण किया जाना चाहिए ताकि वे इस महामारी के दौरान अपना महत्वपूर्ण कार्य जारी रख सकें। फादर ब्रूनो सिसेरी वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में वर्तमान स्थिति को बहुत कठिन बताया। कुछ नाविकों ने मानसिक तनावों का सामना किया और यहाँ तक कि कुछ ने आत्महत्या तक कर दिया। टीकाकरण के सवाल पर फादर सिसेरी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव IMO और ILO के सचिव ने भी बहुत सारी अपीलें की थी। यहाँ तक कि संत पापा फ्रांसिस ने यह अनुरोध किया था कि नाविकों को प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन तक पहुंचने में सक्षम होना प्रत्येक देश पर निर्भर करता है। बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में चालक दल के सदस्य अपना टीका प्राप्त करने के लिए नाविक केंद्र जा सकते हैं। हालांकि अन्य देशों में वैक्सीन प्राप्त करने में सक्षम होना बहुत अधिक कठिन साबित हुआ है। कुछ साल पहले 2011 और 2012 में समुद्री डकैती मुद्दा बड़े पैमाने पर था। सैकड़ों जहाजों को अदन की खाड़ी जैसे क्षेत्रों में उनके माल को लूटा जाता था। फादर सिसेरी ने कहा, हालांकि स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन पिछले एक साल में कम से कम 38 घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि जहाज के मालिक अपने जहाजों को यथासंभव सुरक्षित बनाएं। उधर भारत में बिना रुके कोरोना वायरस की दौड़ जारी है। विशेष रूप से तथाकथित डेल्टा संस्करण के कारण आज तक 30.5 मिलियन से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि मौतों की संख्या 405,000 से अधिक है। इस नाटकीय परिदृश्य का सामना करते हुए गोवा और दामन के महाधर्माध्यक्ष फिलिप नेरी फेर्राओ की अध्यक्षता में लैटिन रीति की कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन CCBI ने शनिवार 7 अगस्त को भारतीय समय अनुसार संध्या 8:30 से 9:30 बजे तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रार्थना सभा की घोषणा की है। यह प्रार्थना सभा चेन्नई में संत थॉमस, गोवा में संत फ्रांसिस जेवियर, कलकत्ता में संत मदर तेरेसा की कब्रों पर और बांद्रा, मुंबई, सरधना मेरठ, हैदराबाद, शिवाजी नगर, बैंगलोर और वेलंकनी की मरियम तीर्थालय महागिरजा घर में आयोजित किया जाएगा। कैथोलिक टेलीविजन पर और वेब पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। 7 अगस्त की प्रार्थना मृतकों की आत्मा की अनंत शांति, शोकित परिवारों और समुदायों के साथ एकजुटता और दुनिया के स्वास्थ्य के लिए समर्पित होगी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।